ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति ने आज नई दिल्ली में भावी मुख्यमंत्री के मुद्दे पर चर्चा की। दिल्ली सहित पूरे देश में आज संत रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड मेले में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं और विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी दिल्ली में राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राजधानी में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आज दिल्ली भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा और अलका गुर्जर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, बांसुरी स्वराज और प्रवीण खंडेवाल सहित कई अन्य नेता भी बैठक में मौजूद थे। इस बीच दिल्ली में नई सरकार और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा जारी है। मीडिया रिपोर्ट में मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के कई नेताओं को रेस में बताया जा रहा है। हालांकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने आधिकारिक रूप से अब तक किसी नाम की घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और अमरीका के दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला हो सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित आज पूरे देश में संत रविदास जयंती मनाई गई। इस अवसर पर शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुरु रविदास जयंती के मौके पर लाल किला के 15 अगस्त पार्क में धर्मसभा आयोजित की गई और कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गईं। दिल्ली सरकार ने 12 फरवरी को संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि संत रविदास ने मानवता की सेवा को अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने कहा कि वे धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव को मिटाने और समाज में एकता लाने के लिए समर्पित रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी से गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपनाने और समृद्ध तथा विकसित राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महान संत, कवि और समाज सुधारक गुरु रविदास जी ने जाति विहीन समाज की कल्पना की थी। श्री धनखड़ ने कहा कि उनके आदर्श देश को सामाजिक एकता और समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। उपराष्ट्रपति ने लोगों से गुरु रविदास के मार्ग पर चलने और भारत को मजबूत बनाने में योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संत गुरु रविदास ने समाज से भेदभाव उन्मूलन के लिए पूरा जीवन लगा दिया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सेवा, सहनशीलता और भाईचारे का संदेश दिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने संदेश में कहा कि संत रविदास जी के विचार और शिक्षा हमें सत्य, समानता और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे गुरु रविदास जी के आदर्शों को आत्मसात कर एक समतामूलक समाज के निर्माण में योगदान दें। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के करोल बाग स्थित श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। संत रविदास 14वीं शताब्दी के एक चर्चित कवि, संत और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपनी कविताओं और दोहों के माध्यम से समाज में फैली छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान विचारक, समाज सुधारक और प्रखर राष्ट्रवादी महर्षि दयानंद सरस्वती को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि महर्षि दयानंद जीवन भर समाज को अज्ञानता, अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ जागरूक करने में लगे रहे। श्री मोदी ने कहा कि शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के साथ भारतीय विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए महर्षि दयानंद के प्रयास देशवासियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन स्थित वॉर रूम से प्रयागराज जंक्शन और दूसरे स्टेशनों से चलाई जा रही महाकुंभ गाड़ियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने यात्रियों की सुविधा के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया। आज दोपहर तक यात्रियों की सुविधा के लिए 190 गाड़ियां चलाई गई और करीबन 10 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। कल मंगलवार को 343 गाड़ियां चलाई गई थी और करीबन 14,70,000 लोगों ने यात्रा की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 3 दिनों में महाकुंभ के सभी 8 स्टेशनों से 1,006 ट्रेनें संचालित की गई, जिससे 41,67,000 श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस वर्ष मेले में साझेदार राज्य मध्य प्रदेश और ओडिशा हैं। मेले में मिस्र, इथियोपिया, सीरिया, अफगानिस्तान, बेलारूस सहित लगभग 42 देशों के करीब 600 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा बिम्स्टेक देश, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड भी मेले में भाग ले रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देना है। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस मेले के लिए आगंतुक टिकट मेला स्थल पर निर्धारित काउंटरों और दिल्ली मेट्रो के ऐप दिल्ली सारथी 2.0 से खरीद सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्टेशनों पर भी टिकट खरीदे जा सकते हैं।
इस वार्षिक मेले में पारंपरिक व्यंजनों को आगंतुक खूब पसंद कर रहे हैं। मेले में हस्तशिल्प के साथ हाथों से बुने वस्त्र, खिलौने और आभूषण लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए मेले में भाग ले रहे जम्मू और कश्मीर के हस्तशिल्प कलाकार पद्मश्री हाजी गुलाम रसूल खान ने कहा कि सूरजकुंड मेला एक ऐसा मंच है जहां हस्तशिल्प कारीगरों को अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और इसको लोग काफी सराहना करते हैं।
मेला है, इस मेले में बहुत सारे स्टेटों से बल्कि बिरुन मुल्क से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंट्रियों से आ गए हैं जो यहाँ अपने चीजों का नुमाइश करते हैं। के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से।
मेले में आ रहे लोग विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की खरीदारी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में हरियाणा की शालिनी बताती हैं कि यह मेला भारतीय और विदेशी सामानों की खरीदारी का एक बेहतर मंच है।
हमारा हर साल ही यहाँ पर आना होता है, इस बार भी मेला बहुत अच्छा है। खासकर जो हैंडलूम की चीजें हैं वो बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती हैं।
मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार तथा सांस्कृतिक समूह अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। इसके अलावा शाम को मुख्य चौपाल में मंत्र मुग्ध कर देने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। रईसुद्दीन के साथ अनुपम मिश्र, प्रादेशिक समाचार, दिल्ली।
भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वे जल्द ही महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 50 रुपये मूल्य वर्ग के बैंक नोट जारी करेगा, जिस पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों का डिजाइन अपरिवर्तित रहेगा और सभी मामलों में महात्मा गांधी नई श्रृंखला में मौजूदा 50 रुपये के बैंक नोटों के समान होगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा पहले जारी किए गए 50 रुपये के सभी बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी की तरफ से दिल्ली के पंडित रविशंकर स्टूडियो में राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। इसमें मंच तथा सिने कलाकार योगेंद्र टिक्कू, शास्त्रीय संगीत गायिका सीता वसंता लक्ष्मी और रेडियो संवाद लेखक डॉ. सुभाष चंद्र, रेडियो जॉकी ऋतु रॉय और आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक योगेंद्र पाल शामिल हुए। सतत विकास के लिए डिजिटल रेडियो विषय पर भी चर्चा हुई। आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि अतिथियों ने रेडियो की धरोहर को अपनी कलाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया है।
ये बहुत जरूरी है आगे के लिए कि जो हमारा ग्लोरियस पास्ट रहा है आकाशवाणी का, उसमें से कुछ हम लोग आपके अनुभवों से सीख सके। तो ये आज के आयोजन का उद्देश्य यही था कि जो नई पीढ़ी के प्रोग्रामर्स यहाँ हैं और भी लोग जो सुन रहे हैं, श्रोता हैं, कि आकाशवाणी का जब पुराना समय था तब किस रूप से आप लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और यहाँ तक आए।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का विषय है में परीक्षा के बढ़ते तनाव और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य से निपटने के प्रयासों पर चर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने आज विद्यार्थियों से विफलता के डर की चिंता किए बिना अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी कमजोरियां दूर करने का आग्रह किया। सुश्री पादुकोण परीक्षा पे चर्चा 2025 के दूसरे भाग के दौरान विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए और अगर कोई गलती हो तो घबराना नहीं चाहिए। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विद्यार्थियों के साथ बातचीत का हवाला देते हुए फिल्म अभिनेत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे जरूरत पड़ने पर परिवार और दोस्तों के साथ खुलकर बात करें। सुश्री पादुकोण ने कहा कि अच्छी नींद, पर्याप्त धूप और अगर कोई तनाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है तो हमेशा मदद के लिए पहुंचना चाहिए। दीपिका पादुकोण ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को कलंक नहीं माना जाना चाहिए और ऐसी किसी समस्या का सामना करने वाले लोगों को हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। सुश्री पादुकोण ने इस बात पर जोर दिया कि एक बच्चे की क्षमता पारंपरिक शिक्षा से अलग अन्य क्षेत्रों में भी हो सकती है। सुश्री पादुकोण ने कहा कि तनाव महसूस करना स्वाभाविक है और यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को सीखना चाहिए कि इसे कैसे संभाला जाए। इश्फाक की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
आज ग्रेटर नोएडा के भारत एक्सपो मार्ट में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल महोत्सव भारत टेक्स 2025 शुरू हो गया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा, नोएडा के सांसद महेश शर्मा और अन्य अधिकारी इस प्रदर्शनी में उपस्थित थे। भारत टेक्स 2025 का ये दूसरा संस्करण ग्रेटर नोएडा के भारत एक्सपो मार्ट में आज से शुरू हो गया है जो 15 फरवरी तक चलेगा। इस महोत्सव का अन्य संस्करण नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 फरवरी से 17 फरवरी तक चलेगा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कपड़ा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत टेक्स समारोह में 6,000 से अधिक विदेशी खरीदारों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कपड़ा उद्योग अग्रणी उद्योग बन गया है। उन्होंने कहा कि कपड़ा उद्योग देश की एक मजबूत उद्योग है और बाजार में इसकी कीमत $176 अरब है। श्री सिंह ने बताया कि इस उद्योग का लक्ष्य $350 अरब का व्यापार करना है। राजधानी के यशोभूमि में जारी भारत ऊर्जा सप्ताह का आज दूसरा दिन है। इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत ऊर्जा सप्ताह में स्थापित प्रदर्शनियों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, फ्रांस, रूस और जापान सहित 10 देशों के मंडपों में ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण के विचार को प्रदर्शित करते हुए मेक इन इंडिया जोन, इकोसिस्टम जोन, नवीकरणीय ऊर्जा जोन, गैस वितरण जोन जैसे कई विषयगत क्षेत्र भी स्थापित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि दुनिया की 17% आबादी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा आयातक है। श्री पुरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान कई बैठकों में भाग लिया। इस दौरान ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड सहित बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता पर चर्चा की गई। मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आज नई दिल्ली में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर फोरम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे मत्स्य पालन क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ आने और समाधान खोजने के लिए एक मंच मिलेगा। श्री सिंह ने कहा कि इससे पर्यावरण और मत्स्य पालन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति ने आज नई दिल्ली में भावी मुख्यमंत्री के मुद्दे पर चर्चा की। दिल्ली सहित पूरे देश में आज संत रविदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरजकुंड मेले में देश भर से लोग पहुंच रहे हैं और विश्व रेडियो दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी दिल्ली में राग रेडियो रंग रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।